राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 4 मई 1993 साय लगभग 4 बजे गीता भोत्सर्ग आश्रम ऋषिकेश में संपन्न हुआ। राम
पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादौष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समहं न जाने। हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण।
जब प्रभु कृपा करते हैं तो क्या प्रभु कभी कृपा करते हैं कभी नहीं कृपा करते हैं?
ना, प्रभु की कृपा अनित्य नहीं होती है। कभी साधक की दृष्टि उधर जाती है कभी साधक की दृष्टि नहीं जाती। उसी से ही भगवान कृपा करते ऐसे कहते हैं कभू की करी करुणा नर देही दिए तीस बिन ही सुने ही। ऐसा भक्त का भाव होता है उसी कारण से भगवान कभू है। ऐसे तो सब मम प्रिय सब मम उपजाई और सब मर पूरी परावरी दया सब मम प्रिय सब मम उपजाया सब पर मोरी बराबरी दाया बराबर दे सब पर दुष्ट है दुष्ट। फर्क क्या है? ये फर्क भगवान की तरफ से नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दें। फर्क साधक की तरफ से है। जैसे सूर्य का प्रकाश कोई पक्षपात नहीं होता हुआ भी सब जगह समान रहता हुआ भी विशेष ताप से प्रकट होता है। जैसे मिट्टी से ही कांच बनता है मिट्टी से ही ठीकरी और कांच का टुकड़ा बनता है। कांच का टुकड़ा दे दिया जाए मिट्टी की ठीकरी दे दी जाए तो उसकी छाया हो जाती है। सूर्य की पूर्ण किरण वहां नहीं पड़ती छाया हो जाती है। और काश दे दिया जाए तो काश में भीतर होकर के भगवान का प्रकाश पड़ जाता है। और काश अगर आत्म शीशा हो तो उसके ऊपर दिया जाए तो आग लग जाती है। ये सूर्य का पक्षपात नहीं है ये पात्र का पक्षपात है। ठीकरी अलग होती है काश अलग होता है और आज से जिसमें अग्नि पड़ती है वो काज अलग होता है। उस काज को ऐसे करके अग्नि अंदर जाए तो उसी दुख जाएगी आग बच जाएगी। हाँ पात्रता का फर्क है। पात्रता में योग्यता नहीं होती है। ये सदा याद कर लो योग्यता है वो अयोग्य के सामने काम करती है। धनवत्ता निर्धनता के सामने काम करती है। विद्वत्ता मूर्खों के सामने काम करती है। वैराग्य जो रागी भोगी उन पर काम करता है। जो योग्यता है वो अयोग्यता पर काम करता है। परमात्मा योग्यता अयोग्यता से अतीत है वो योग्यता के अनुसार काम नहीं करते भाव के अनुसार है। उनके भाव बनते हैं भाव के अनुसार। अब योग्यता गिरिधर की क्या योग्यता थी गजेंद्र की क्या योग्यता थी अजामिल की क्या योग्यता थी और द्रौपदी की क्या योग्यता थी, ये योग्यता नहीं है, ये पात्रता है। पात्रता योग्यता को लेकर नहीं होती है, योग्यता को लेकर पात्रता होती है संसार में। परमात्मा के यहाँ योग्यता नहीं होती, किंतु भावग्राही जनार्दना धीरो बदते ही कृष्णा बंदो बदते कृष्णाय धीरो बदते विष्णु भाई उभयोस्ता फलम तुल्यम भावग्राही जनार्दना। मूर्ख होता जो व्याकरण को नहीं जानता है वो मंदो बदते विष्णाय विष्णाय नमः यूं कहता है, परंतु पढ़ा लिखा ऐसा नहीं कहेगा। वो वदति विष्णवे नमः कृष्णाय नमः होता है, विष्णाय नमः थोड़ा ही होता है, होता ही नहीं। तो मंदो वदति विष्णाय और धीरो वदति विष्णवे उभयोस्तु फलं तुल्यं, योग्यता में तो बड़ा बड़े अंतर है। अशुद्ध बोलता है बिल्कुल ही, एक योग्यता शुद्ध बोलता है, तो योग्यता लेकर पात्रता नहीं होती। भावग्राही जनार्दन दोनों का भाव एक है, तो है वो अशुद्ध बोलने के साथ में भाव ज्यादा है तो उस पर प्रश्न ज्यादा हो जाएंगे। जैसे बालक तोता बोलता है तो तोता वाणी है वो माँ पिता को अच्छी लगती है, ऐसे अशुद्ध वाणी भी भगवान को प्यारी लगती है। भगवान वाणी की तरफ नहीं भाव की तरफ बोलते हैं। तो पात्रता योग्यता सांसारिक विशेषता ये वहाँ नहीं चलती है, वहाँ भाव चलता।
जैसे आपने उदाहरण दिया है मिट्टी का, आपने जैसे उदाहरण दिया मिट्टी का सूर्य है पक्षपात नहीं करता ये ठीक है, तो आदमी विशेष ज्यादा अग्नि देता है,
हाँ जी
तो एक तरह सबके लिए
ज्यादा ग्रहण करता है, तो जड़ चीज में तो योग्यता काम करेगी कि सूर्य जड़ है कांच भी जड़ है। जड़ चीज में तो योग्यता की मुख्यता होगी, चिन्मय तत्व में योग्यता की मुख्य नहीं होगी। अच्छे अच्छे पंडित एवं सदाजी नहीं होते। एक विद्वान हुए है, क्या नाम था जी उनका, मोरोजी पंत, बहुत नामी विद्वान थे वो। उस पर अपने जमाने में मुख्य पंडित कहलाते थे, वो पंडिताई का बड़ा गर्व था, घमंड था। तो एक दिन जा रहे थे तो उनको प्रेत जो खईस ब्रह्म राक्षस वे दिखे। एक बड़ा कुछ वृक्ष था उसकी टहर डाली पर बैठे थे, तो एक जगह खाली थी, तो कि मरेगा जब यहाँ कौन आएगा, तो कहा कि ये जो मोरोज पंत है ना ये आएगा, उनके लिए जगह खाली है। तो उसने वो सुन ली, कोई भगवान की कृपा थी। फिर वो महाराज ऐसे नम्र हो गए, फिर किन के पास गए,
ज्ञानेश्वर जी
मार्ग शरण हो गए। ज्ञानेश्वर तो बच्चे थे, ज्ञानेश्वरी कितनी वर्ष में समाधि ली, कितनी अवस्था थी समाधि ली, जब 22 साल की अवस्था में तो ज्ञानेश्वरी ने समाधि ले ली थी, समाधि 22 अवस्था में 22 वर्षों में। एक छोटे थे ये मुरलीपन, तो बड़े थे पंडित थे नामी, योग पंडिता में नामी नहीं थे, इनके शरण गए। फिर वो भजन करने लग गए अभिमान में था। तो योग्यता होती है वो संसार में काम दे सकती है, क्यों कि संसार में बला बल योग्यता को लेकर है, बल को लेकर के है, राज्य है, संपत्ति है, सेना है, बुद्धिमानी है, विद्या है आदि, ये चीजें काम करती है संसार में। परमात्मा की तरफ चलने में ये विशेषता वहां नहीं चलती है। इसमें पूछो, खूब प्रश्न करो, प्रश्न किए बिना मेरे क्या पता आप कहाँ है किस जगह है, प्रश्न करने से पता लगता है। तो योग्यता होकर के पात्रता नहीं होती है, पात्रता भाव को लेकर होती है और विवेक को लेकर होती है। अब इसमें पूछो, तो क्या बात चल रही थी?
जब प्रभु कृपा करते हैं तो भगवान का पक्षपात नहीं होता?
हाँ, पक्षपात नहीं होता। तो भगवान का पक्षपात नहीं होता है, जैसे सूर्य में ये पक्षपात नहीं है कि आज शीशा में तो आग पैदा कर दूं और ठीकरी में छाया कर दूं और काश में जो पूरा प्रकाश दे दूं, ऐसा सूर्य में स्वप्न में भी नहीं कोई होता। ऐसे वो पात्रता क्या है? वो सन्मुखता है, जिससे आत्म शीशा होता है उसमें अग्नि तत्व मुख्य होता है। काश में उतना नहीं होता, ठीकरी में काठ में उतना अग्नि तत्व नहीं होता है। जो कोई यहाँ वैद्य है तो वे इस बात को समझेंगे जो अब कहता हूँ। चंद्रोदय की भट्टी उतारते हैं तो उसमें जो आँच से शीशे की शीशी होती है, उस शीशी में आँच लगाते हैं, इतनी विलक्षण आँच लगाते हैं जिसमें वो सब पारा गल जाता है। गल करके शीशी के ऊपर के भाग में आकर के ये जम जाता है। चंद्रोदय भट्टी होता है, चंद्रोदय ताल चंद्रोदय मल चंद्रोदय सिंदूर चंद्रोदय, ये चंद्रोदय के भट्टी वैद्य को जानते हैं।
बनती
बताते
हैं
पारा भसम आरसी की शीशी में बनती बताते
हैं। हाँ, तो पारा भसम बन जाती है, चंद्र हो जाता है। तो आज शीशी वो है कि आग खूब जलाई जाए तो ये जल्दी फूट नहीं है वो, जिसमें अग्नि की प्रधानता होने के कारण से सूर्य का ज्यादा असर पड़ता है। तो ये जड़ पदार्थों में तो सजातीयता ये है, और परमात्मा में तो सजातीयता स्वतः है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि स्वतः है वो, तो उसमें तो भाव बनता है, सन्मुख होता है, तब विलक्षणता आती है, योग्यता से विलक्षण नहीं आती है। इसमें शंका हो जाएगी कुछ और कुछ। तो भगवान की कृपा विशेष कम ये नहीं होती है, वो जो जितना भाव है वो ग्रहण करता है जितना, उतना उसको प्रतीत होता है। तो ऐसा दिखता ऐसा है, परंतु भगवान की कृपा बराबर होती है। जैसे आठ शीशा पर और सामान्य शीशा पर और काठ के टुकड़े पर सूर्य का प्रकाश बराबर है, सूर्य के कोई पक्षपात नहीं है। अब समोहम सर्वभूतेषु, थोड़ा ध्यान देना, भगवान कहते हैं समो अहम सर्वभूतेषु, सब प्राणियों में समान हूँ, तो समान रूप से व्यापक हूँ, समान रूप से कृपा करता हूँ, समान रूप से सबका पालन पोषण करता हूँ, समान रूप से सबके कर्मों की व्यवस्था करता हूँ, ऊंच नीच लोग ले जाने में सबके वर्त समान हूँ मैं सबके। समोहम सर्वभूतेषु, न मेरे विरुद्ध से विरुद्ध चलने वाले के साथ भी मेरी द्वेष वृत्ति नहीं होती, उन अनुकूल से अनुकूल वृत्ति पर भी राग वृत्ति मेरे नहीं होती है। न मैं द्वेषोस्ति न प्रिय, न द्वेष्य न प्रिय है समोहम, पर ये भजन्ति तुम भक्तिया, भक्ति से मेरा भजन करते हैं तो मैं उनमें हूँ वे मेरे में हैं। जैसे ये कपड़ा सामान्य रहा, अब कपड़ा इतना उथल गया तो ये दुगुनापन इस कपड़े में हुआ, न कि ऊपर सूर्य ग्रह प्रकाश में। ऐसे भगवान कहते हैं मेरे जैसे शरण हो देते हैं उनकी तरह मैं उनके साथ बर्ताव करता हूँ, तो ये समता का बर्ताव है और विशेषता से भी आता है, तो उसके लिए वैसा बर्ताव ये समता का ही बर्ताव है, क्योंकि वो विशेष भाव रखता है। अगर भगवान उस पर विशेष कृपा न करे तो भगवान की विषमता हो जाती है। वो भाव विशेष है, भजन दे तो माम भक्तिया, भक्ति से मेरा भजन करते हैं, मई ते सुचापे वे मेरे में मैं उनमें, ये विशेषता आ जाती है। तो ये विशेषता भगवान की खुद की हुई नहीं है, ये भक्त की हुई है। भगत जितना सन्मुख होता है ये इतना हुआ तो इतना दूरा हो गया, दूरा हो गया तो कपड़ा दूरा हो गया, इसमें प्रकाश ऊपर से कोई थोड़ी हो गया, ये भजन तो माम भक्त्या मैत्री तेरसा प्यों ये विषमता आती है तो उसकी योग्यता को लेकर नहीं है, भाव को लेकर के है। योग्यता परमात्मा की तत्व चलने में योग्यता काम नहीं करती है, योग्यता विद्या ये काम। एक सिद्धांत बताऊं आपको, बलवान का असर निर्बलों पर पड़ता है, धनवान का असर धन के लोभी निर्धन होते उन पर असर पड़ता है। ऐसे संसार में सभी जैसे आगे बात क्षमा करेंगे, जवान स्त्री हो तो उसका पर्स जो स्त्री की आसक्ति है उन पर पड़ता है, छोटे बच्चे पर नहीं पड़ता, वो वही खेलता है, अंगूरी में खेलता है ख्याली में। तो ये यहाँ पर संसार में तो योग्यता समझ ये असर पड़ने में कारण है, अरे भगवान के यहाँ असर इनका नहीं पड़ता है। कितना ही योग्य हो, कितना ही बलवान हो, कितना ही विद्वान हो, कितना ही बड़ा वैराग्यवान हो, कितना ही वो त्यागी हो, कितना ही विलक्षण हो, ये लोगों की दृष्टि में विलक्षण होता है, भगवान की दृष्टि में तो भावक लाए, भगवान भाव भोगता है, उनका भाव विशेष होता है, तब वहाँ विशेषता से प्रकट होते हैं, वहाँ पात्रता योग्यता को लेकर नहीं होती। हाँ तो उसमें उसमें कोई हमारे विवाद नहीं है, उसमें कोई मतभेद नहीं है, जितना भाव शुद्ध होगा उतना ठीक होगा, जितना अंतर्गत निर्मल होगा उतना ही भगवान के भाव को ज्यादा ग्रहण करेगा, परंतु ये नियम नहीं है। अब इसे सुदुराचारो भजते माँ मन ने भाग, वो दुराचारी से दुराचार भी भजन करता है तो साधु मंतव्य है, उसको साधु मान लेना चाहिए। तो अंतकरण की शुद्धि है वो परमात्मा की प्राप्ति में हेतु है, अंतकरण जितना शुद्ध होगा इतनी अच्छी बातें उनको अच्छी लगेगी, और अशुद्ध होगा तो अशुद्ध बातें अच्छी लगेगी। जैसे धन की बात है लोभी को अच्छी लगती है, वह त्यागी को धन की बात इतनी अच्छी नहीं लगती। मेरे साथ ही थे एक, उनके पास कुछ रुपये रखे तो रुपये अपने नहीं है परंतु छूटते नहीं थे, बड़ी मेहनत से छुड़ाया, मेरे ऐसा काम पड़ा कि रुपये और तरह से दिए थे, मेरे पर दया कि उस काम में लगाना है, ऐसा करना है, तो वो किसी के पास रखा, वे किसी पास रखा, उन्होंने अपना गौशाला में जमा कर लिया, और बड़ी मेहनत से छुड़ाया रुपया, अपना नहीं है परंतु रुपया आ सकती है। तो ये लौकिक चीजों में तो ऐसी बातें होती है, परंतु पारमार्थिक में ऐसी बातें नहीं होती। मानो लोभ अधिक होता है तो अपने रुपये प्यारे लगे ऐसे नहीं, रुपयों की बात ही प्यारी लगती है, स्त्रियों की बात ही अच्छी लगती है, उन बात ही। ये दृष्टांत दिया हमारे भागवत में, आश्चर्य जैसी बात है, भागवत में आया कि प्रेमी मिल जाते हैं तो आपस में बातें, साधु बिटा नहीं हूँ, बिटा नाम हूँ साधु, क्या समझे?
सिद्ध वैद्यों में कभी है ही
बिल्कुल आते थे, बहुत उसमें रस लेते हैं। ये दृष्टांत दिया, ऐसे दो भक्त मिलते हैं तो भक्ति की पार्थता भक्ति बड़ा भारी विचित्र उनकी विलक्षणता आ जाती है, ये दृष्टांत दिया। तो भाव है भगवान का, भगवान के भाव और बोध ये दो चीज खास चलती है, और त्याग तीन चीज, भाव बोध और त्याग। भीतर से जो त्याग है उसकी वह कीमत है, भीतर से जो भाव है उसकी कीमत है, भीतर से जो वास्तविक बोध है उसकी कीमत है, योग्यता की कीमत नहीं है। इसमें और शंका बताओ, अंतःकरण शुद्ध होगा तो भगवान की रुचि होगा, अच्छी बात, ये बात ठीक है, हम तो मानते हैं। ये जो मैं कह देता हूँ कभी कभी कह देता हूँ, मेरे मन में आती है कि अंतःकरण वह क्या करेगा, वस्तु है वो करती रही तो कर्तव्य करता पण भी वहाँ नहीं है, साक्षर कारक है उनमें, कर्ता सबसे मुख्य है, स्वतंत्र कर्ता, क्रियायांग स्वातंत्र विवेचित अर्थ करता, जो स्वतंत्रता से होता है वो कर्ता होता है, तो कारकों में कर्ता सबसे मुख्य होता है। वो कर्तापन भी परमात्मा में नहीं चलता है। प्रकृति वज कर्माणी क्रियमानानी पश्यति क्रियमानानी सर्वशा यह पश्यतात्म अकर्तारम से पश्यति, वो अकर्ता देखता है। तो कर्तापन वहां नहीं चलता, तो कर्तापन नहीं चलता कर्ण कैसे चलेगा। तो कर्ण की बात कहता हूँ तो परमात्म तत्व के विषय में कहता हूँ, मेरा अर्थ नहीं है कर्ण अंतर में शुद्ध नहीं होता। शुद्ध अंतर के बना उधर रुचि नहीं होती, दुराचार दुर्गुण होते हैं वो तो नरकों में जाते हैं सीधे बिना किसी के पूछे जाते आप सारे, क्यों उनके साथ में सजाती है दुराचारों की। खान पान खराब है, आचरण खराब है, चोरी करता है, विचार करता है, दूसरों को देता है, मारता है, हिंसा करता है, ऐसे को तत्व ज्ञान नहीं होता। तत्व परमात्मा की प्राप्ति जहाँ होती है वहाँ के लिए कहता हूँ कि वहाँ कर्ण काम नहीं करता है, कर्ण काम संसार में करता है, परमात्मा तत्व में कर्ण काम नहीं करता है। ये मेरा तात्पर्य, ये नहीं है कि अंतःकरण अशुद्ध होने से हो जाए, पर अशुद्ध होकर के भाव बन जाए, अर्थ हो जाए तो महाराज ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे। तो कर्ण निरपेक्ष कहता हूँ, कर्ण रहित कहता हूँ, तो कहाँ कहता हूँ कि जहाँ परमात्मा तत्व की प्राप्ति है उसमें कर्ण शुद्ध और अशुद्ध हो, अंतःकरण अशुद्ध हो तो प्राप्ति नहीं होगी। ये मैं पूछना चाहता हूँ, कोई अच्छे पढ़े लिखे पंडित हो वेदांत के, तो मेरे तो जिज्ञासा है कि उस उपनिषद का अंतःकरण शुद्ध होने से परमात्मा की प्राप्ति होती है, तो परमात्मा की प्राप्ति कर्ण द्वारा होती है क्या? आप भी पूछ लें।
अब जो आपने खोला ना ये बहुत बढ़िया है, ये बात खुल गई ना। हाँ। कि मैं वो आखिरी तत्व के लिए कहता हूँ, ये तो खुला है ना, इससे बड़ा फायदा होता है।
हाँ।
आपने जो कहा ना बोला इससे बड़ा स्पष्ट हो गया।
हाँ। तो पूछो, स्पष्ट होगा। मैं तो बहुत बार कहता हूँ आप प्रश्न करो, विषय बहुत विशद होगा, स्वच्छ निर्मल साफ साफ होगा। अब मेरे को ये क्या पता कि कौन आदमी कहाँ शंका लिए बैठा है, प्रकट कर दो तो उसका विवेचन मैं कर दूंगा। मैं अंतरियम होनी मेरे पता है नहीं, आप साहब मैं ध्यान करके उस विषय का प्रतिपादन जो कहता हूँ उसका ठीक अपनी देश से करता हूँ, परंतु उसमें किस आदमी के क्या शंका है इसको मेरे को पता नहीं। और शंका करे तो कई की शंका दूर हो जाती उसमें।
ये बात हमने कई दफा हमने कही है, थोड़ा बहुत सत्संग करते हैं ना बार गाँव में।
हाँ।
तो वहाँ ये बात हम तय कर सुनती थी कहें ना थोड़ा, तो वो सीधा कह देंगे स्वामी कहते हैं करण की जरूरत नहीं। मैंने कहा स्वामी जी कहाँ कहते हैं समझते होंगे आप।
हाँ।
स्वामी जी कहते हैं
आखिरी तत्व की प्राप्ति वहाँ कोई कार्य नहीं होता,
तो मानते नहीं है साहब। वो आपके अब आप सोच देते हैं तो फिर सब ठीक हो जाता है।
और तो वो ठीक है, मेरी बुला लो। मैं तो देखो मैं प्रवाह में जो विषय आता है वैसा विवेचन कर देता हूँ, पर मेरे से शंका करो, मेरे संदेह नहीं है इस बात इन बातों में। तो अंतःकरण है, ये कर्ण निरपेक्ष तत्व है, साध्य और साधन है, पुस्तक लिखी है उसमें कर्ण निरपेक्ष का विस्तार से वर्णन किया है। कई विषय दे कर्ण निरपेक्ष के विषय में कई कई शीर्षक देकर के उस विषय का विवेचन किया है। तो उसको देखो, कर्ण रहित और कर्ण कर्ण निरपेक्ष और कर्ण रहित इन दोनों का विश्लेषण किया है। कर्ण रहित और चीज है, कर्ण 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 सापेक्ष और चीज है, कर्ण निरपेक्ष और है, कर्ण रहित और है। उस पुस्तक को पढ़ो आप, उसे पता लगेगा। आप ऐसे अच्छे पंडितों से मिलते हैं, हमारे तो काम कम पड़ता है। मेरे तो कभी जाने का काम पड़ा तो मैं जल्दी रहती, मेरे को पहले बुला कर रवाना कर देते, बात करने का मौका मिलता नहीं है। तो आप उनको बताओ, जैसे अपने गीता दर्पण है, तो आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप उन पंडितों के पास जिनके प्रति मेरी श्रद्धा है कि ये पंडित है, विद्वान है, शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता है, मेरे से अधिक पढ़े लिखे हैं ऐसा मैं मानता हूँ, हृदय से स्वीकार करता हूँ, तो उनके सामने कम से कम के जो गीता दर्पण है इसका प्राक कथन और सूति के क्या क्या इसमें वर्णन है इतना तो जरूर पढ़ लें आप, और जिस विषय को विशेष देखना हो उस सूति में देख लो, विषय देखो, इतना कम से कम देखो आप। बात क्या है कि पुस्तक मिल गई धर दी, हमें हिंदी की पुस्तक संस्कृत पढ़े क्या देखे, क्या देखे, हिंदी के लिए पुस्तक है। तो इतनी प्रार्थना आपसे करता हूँ कि उनको कहो गीता दर्पण आप देखो, और उसमें सूची सूची देख लो, केवल गीता में क्या क्या है सूची, और उस सूची का दो चार प्रकरण आप नमूने से देख लो कि किस किस तरह से क्या वर्णन हुआ है, ऐसा देखो आप। देखो पर छोड़ दो पुस्तक, भले दे दो किसी को ही, भले भीतर रख दो, वो मजा आपकी मर्जी है, पर कम से कम देख तो करना चाहिए ने? मेरे पास तो पुस्तक आती है तो मेरे को समय नहीं है, मैं पहले कह देता हूँ मेरे पास समय नहीं है, परंतु उस पुस्तक का विषय क्या है, उसमें विषय सूची क्या क्या विवेचन है, कौन से प्रकरण है, ये तो मैं देख ही लेता हूँ। जो पुस्तक नहीं आती समय मेरे कम होने पर भी, तो इस तरह की बात है।
उपासना करने में क्या हेम दृढ़ नहीं होता?
ना, उपासना करने में दृढ़ नहीं होता, अहम दृढ़ जड़ता के संयोग से होता है। चिन्मय तत्व की उपासना करने से चेतनता की मुख्यता होती है, जड़ता की मुख्यता नहीं तो अहंकार पुष्ट नहीं होता है। यही तो मैं स्वयं ज्योति जी से कहा था कि आप कहते हो कि तस्वीर रखो, भगवान का पूजन करो, तो महाराज ये तो द्वैत दृढ़ हो जाएगा, तुझे करे एक पूजे एक पूजे गए, ऐसा मैंने कहा था। उन्होंने कहा मेरे पास तो इतनी सामग्री नहीं है, तस्वीरें सुंदर सुंदर है, उस तरह से भगवान का पूजन करो, तो पूजन करने से तो द्वैत दृढ़ होगा महाराज, तो अस्तत्व की प्राप्ति कैसे होगी? तो संजोजन का यही विलक्षणता है, यही भगवान की भगवत्ता है, जो द्वैत न होकर अद्वैत चलता है, ऐसा कहा। और मैं ये कहता हूँ द्वैत दृढ़ होता है अहंकार से, जहाँ अभिमान है वहाँ द्वैत दृढ़ होता है, और निरहंकार हो जाता है वहाँ द्वैत नहीं रहता है। उपासना करने में भगवान की मुख्यता रखता है, अपने अहंकार की अपने शरीर की इनकी मुख्यता नहीं है, और इनकी मुख्यता जब तक रहती है तब तक उपासना सिद्ध नहीं होती है। उपासना सिद्ध इनका त्याग करके चिन्मय तम संतत्व होता है, तो उपासना से द्वैत दृढ़ नहीं होता। ये शंका हो उसमें करो, जो शंका हो करो। ये आधुनिक वेदांत पढ़ने वालों को बहुत शंका है विषय में, मैं जानता हूँ, आप पूछो। पर माया उपित मानते हैं, मायोपाधिक मानते हैं, जीव है अविद्योपाधिक, इसकी अविद्या है उसकी माया है, तो माया में प्रतिबिंब उसका नाम ईश्वर है, ये अविद्या में प्रतिबिंब उसका नाम जीव है, ऐसी प्रक्रिया है। भगवान ऐसे माया उपाधि नहीं है, वे माया के मालक है, प्रकृति स्वाम और पुण्यपूर्ण मौसम प्रकृति प्रकृति स्वाम अधिष्ठा है, संभावी आत्मा माया है, ऐसे प्रकट होता हूँ, तो प्रकृति के परवश नहीं है। आधुनिक ग्रंथों में प्रकृति के परवश बताया ईश्वर को। एक दिन प्रसंग चला था शेर जी के सामने, तो उसने कहा कि माया रूपी धेनु के दो बछड़े हैं, एक बछड़ा जीव है एक बछड़ा ईश्वर है। तो शेर जी बोले कि माया रूपी धेनु का बछड़ा नहीं है, ईश्वर सांड है। बछड़ा नहीं है, मायाधिपति है, माया का अधिपाधिपति है, माया के बश में नहीं है। तो माया उपस्थित है जो उसको ईश्वर कहते हैं, और अविद्या उपस्थित उसको जीव कहते हैं। चैतन्यम यदिष्ठानम लिंग देहस्थ यह पुनः छाया लिंग देहस्था तत्संग जीव उचित है, ऐसे वर्ण के जीव वर्ण है मेरे पड़ा हुआ है। तो ये बात एक तरह से अधूरी है, ईश्वर के विषय में अधूरी, ईश्वर के विषय में वो पूरी नहीं ठीक नहीं बैठती है।
जय श्री राम में जय का क्या अर्थ है? जय श्री राम बोलते हैं अपने,
इसमें
जय शब्द का क्या अर्थ है?
जय विजय हो, राम के नाम से विजय हो जाए सब जगह। जय मानो विजय, जी जय धातु है, उस एरस जया जया बनता है, एरस सूत्र है, एरस यस वो जी धातु है, जी अस हो जाए आ रह जाएगा और ई को गुण हो जाएगा और आदेश हो जाएगा, जय बन जाएगा।
कृष्ण भगवान को 16-18 कला का पूर्ण बताते हैं, राम जी को 14 कला का बताते हैं।
ये 14 कला नहीं, 12 कला के राम जी है, 16 कला के कृष्ण भगवान है।
कृपा करके समझाइए फर्क कहाँ पे है, कैसे है?
ये फर्क ऐसे है कि सूर्य होता है उसकी 12 राशि होती है, मेघ ब्रह मिथुन करक सिंह कन्या तोल विष्टिक धन मकर और कुंभ, ये 12 राशि होती है। उन 12 राशियों पर सूर्य का होता तो 6 वर्षों का दक्षिणायन होता है और 6 वर्षों उत्तरायण होता है, तो यहाँ उदय हुआ फिर यहाँ उदय हुआ फिर यहाँ उदय हुआ, यहाँ तक उदय पूर्व है तो ये उत्तरायण हुआ, यहाँ उदय हो यहाँ उदय हो यहाँ उदय हो यहाँ उदय हो यहाँ उदय, यहाँ दक्षिणी तरफ दक्षिणायन है 6 महीनों में, तो 6 महीनों में इधर 6 महीनों में उधर 12 महीनों में सूर्य का एक जगह उगना, ये एक चक्कर होता है। और चंद्रमा नजीक है, सूर्य ऊंचा है, तो चंद्रमा एक राशि पर 2.25 दिन रहता है और सूर्य रहता है 1 महीना एक राशि पर, एक राशि से दूसरी राशि तक 1 महीना लगता है और चंद्रमा को 2.25 दिन लगते हैं। तो चंद्रमा की कला 16 है, एकम से लेकर के पूनम तक रही पूनम की, तो ये 15 कला हुई, ये तो 16 कला है भगवान सूर्य चंद्रमा की खुद की, एक कला रहती है वो कला बढ़ती घटती है, तो 16 कला हुई। तो भगवान कृष्ण अवतार है वो चंद्र वंश होता है, आश्चर्य हो जैसा है। तो व्यवचार दृष्टि की लोग इसे पुरुष तो वही समझेगा, जैसे पुरुष का आकर्षण स्त्री में है, स्त्री का आकर्षण पुरुष में है, ऐसा ही भगवान का गोपियों में, गोपियों का भगवान में है। जयराम जी यहाँ तक पहुँचेगी, क्या समझे वो समझते नहीं, इस बार तो उनकी दृष्टि से थी कहते हैं।
कल 4 बजे आपने कहा था कि या तो भगवान में प्रेम कर लो या दर्शन कर लो, तो भगवान में प्रेम और दर्शन दोनों करना चाहते हैं,
बहुत
अलग अलग है कि एक ही है?
एक ही है, दोनों में अधिक विशेष दर्जा प्रेम का है, दर्शन का इतना ऊंचा दर्जा नहीं है। प्रेम यान का वो बात कहता हूँ भाई, पुस्तकों में पढ़ ली, संतों से सुन ली, मेरे भी कुछ जस्ती है वो बात कहता हूँ, ठेका नहीं देता हूँ। तो भगवान के यहाँ प्रेम की मुख्यता है, प्रेम भगवान में हो जाए, प्रेम नाम किसका आकर्षण, प्रियता केवल भगवान में ही और किसी चीज में ही, पदार्थों में, भोगों में, व्यक्तियों में, वस्तुओं में, स्त्री का पुरुष में, पुरुष का स्त्री में एक आकर्षण है, ये नहीं होता, ये आकर्षण गंदा है। और भगवान में आकर्षण पर महान शुद्ध है, तो भगवान ही प्यारे लगे, मीठे लगे, उसका नाम मीठा लगे, उनके गुण मीठे लगे, उनकी लीला मीठी लगे, उनका धाम मीठा लगे, उनका चरणोदय गंगा जी मीठी लगे, अच्छी लगे, तो भगवान के संबंध से अच्छा बन लगता है, ये प्रेम है। प्रेम है चिन्मय तत्व है और राग आसक्ति जड़ तत्व है, नीचे की तरफ जाता है, तो लोगों के मन में वो आकर्षण विश्वास तो विचार दुष्टा ऐसा भागवत में आया है, श्री जी के लिए पद आया है ऐसा, जिन श्री जी के वश में भगवान होते हैं, स्त्रियों का ऐसा दुष्ट स्वभाव होता है ऐसा है। अब श्लोक याद नहीं आया है, राष्ट्रपति में है वो याद हो तो बताओ कि जब गोपिकाओं को छोड़कर भगवान अंतर्धान हो गए, उस समय में एक गोपी और एक कृष्ण है जो हो गए अनया राधितो नूनम
काम्याना मामसु भस्ते प्रिय हित्वा गोपी काम्याना ततो गत्वा वनम दीक्षं कृत्वा नपारयम् चलितो
नमः। उसमें वो प्रश्न आया जहाँ वे ढूंढ रही है, ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुंची कि श्री जी को लेकर भगवान चले, तो चलते चलते श्री जी के मन में आया कि मैं सब गोपियों से सुंदर हूँ, सबसे श्रेष्ठ हूँ, इस वास्ते भगवान मेरे से प्रेम करते हैं, ऐसा आया है। तो प्रसम आया, प्रशांत आया, तत्र अंतर थी यत भगवान
वहाँ दुरात्म नाम आया है, इसी नाम से दुरात्म नाम
आया। तो वो अच्छा तुम तो आ रही था, तो कहाँ ले भगवान अंतर ध्यान हो गए।
रेमे तया चात्मर्थ आत्मा रामो प्रखंडित कामी नाम दर्शन दैन्यम स्त्री नाम के दुरात्म नाम दुरात्म
काम दुरात्मा ये आया है राधा जी के लिए भगवान की लिस्ट है। तो ये शब्द आए तो बड़े काम के हैं, भगत शब्द देना पड़ता है। तो वहाँ वो जब गोपियां ढूंढती ढूंढती गई तो भगवान जब अंतर ध्यान हा नाथ हा रमानाथ क्वासी क्वासी महाभोज कृष्णा यहाँ दर्शन सन्निधि ऐसा श्लोक है वहाँ वो राधा जी करती है। तो राधा जी ऐसा करती है उसके पास दूसरी स्त्रियां पूछी पहुंची जो बात क्या हुई तो कहा कि ये स्त्री का दुष्ट स्वभाव जो स्त्री का होता है वो दुष्ट तस्वीर राधा जी गई जो मन में कहा कि मेरे को अब उठा कर ले चले ये दुष्टता कारण ये दशा हुई तो श्री जी को दुष्टता कह दी। भगत भक्त कहते क्या बात है, अरे सुखदेव जी के इष्ट था श्री जी का राधा जी का ऐसा कहते हैं, ऐसे सब आ जाते हैं। उनका बड़ा ख्याल है, वे संत प्रेमी लोग वे जानते हैं विशेषता से, हम तो सुनते हैं पढ़ लेते हैं जैसे मुझे भाई बात कह देते हैं भाई बहुत विलक्षण बात है, प्रेम की अलौकिक बात है। और
सुबह वाला प्रश्न पढ़ता आया जी, वो जो आपने लिखवाया था निमित्त कारण उपादान क्या है, रस्ते में सांप दिखता है, सांप की सृष्टि है, ये पूछता है पता नहीं कौन भेजा है।
अच्छा,
वो जो आपने लिखवाया था सुबह
उपाय बात ये है, एक उपादान कारण होता है एक निमित्त कारण होता है। न्यायिकों के संवाद न्यायों के समवाई असमवाई और निमित्त तीन कारण होते हैं, और वेदांति निमित्त और उपादान दो कारण मानते हैं। सृष्टि जो पैदा होती है उस सृष्टि में दो कारण होते हैं। थोड़ा विषय नया है, पढ़ाई जिसे नहीं कही है ना उनके लिए नया है, तो ध्यान देंगे सुनो। मैं जानते हूँ बड़े बहुत सुगमता से कहने की चेष्टा करता हूँ कि आप बिना पढ़े भी समझ लें। ऐसा जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है तो घड़े में मिट्टी कारण होती है, कुम्हार भी कारण होता है, दोनों के बिना घड़ा नहीं बनता, केवल कुम्हार से घड़ा नहीं बनता और केवल मिट्टी से घड़ा नहीं बनता। तो उपादान कारण वो होता है जो पैदा करके साथ में रहता है वो उपादान कारण होता है, और जो पैदा करने के बाद अलग रह जाता है वो निमित्त कारण होता है। तो घड़े का उपादान कारण है वो मिट्टी है, कुम्हार है वो निमित्त कारण है, वो घड़े के साथ साथ नहीं रहता। ऐसे जो रस्सी में सांप दिखता है उस सांप की सृष्टि मानी है, तो वो सृष्टि कैसे है सांप का, वो सांप दिखे उपादान कारण अविद्या है, निमित्त कारण चेतन है। मैंने उल्टी बात सुन ली, इस बात का वो आप पुस्तक देखो, मानो सर्प बना तो है अविद्या से और उसमें सहायता चेतन की है, अगर मंद अंधकार ना हो साफ प्रकाश हो तो साफ नहीं दिखेगा, अगर बिल्कुल अंधेरा हो तो साक्षात सर भी नहीं दिखता, रसी क्या दिखेगी। तो उसमें जो चेतना अंश है वो उसे निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं है। ये बात थी निमित्त कारण उपादान कारण में दृष्टांत दिया है कि ये परमात्मा संसार के अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, रहकर उपादान कारण है। ये वेदांत की प्रक्रिया है जिसको भगवान को भी कल्पित माना है, उनकी है प्रक्रिया। तो वो प्रक्रिया ऐसे है जैसे ये मकड़ी होती है ना, वो नट होती है, वो ऊपर लेकर नीचे तंतु तंतु नीचे आ जाती है, करके लट ऊंचर चढ़ जाती है, देखा होगा लट होती है। ऐसे मकड़ी होती है, वो भी तार तार नीचे उतर जाती है, फिर तार को समेट समेट के ऊपर चढ़ जाती है। जो तार निकलता है उस तार में मकड़ी का शरीर उपादान कारण है, उसमें चेतन है, वो निमित्त कारण है। ऐसे संसार की उत्पत्ति में माया उपादान कारण है और भगवान निमित्त कारण है। संसार उत्पन्न होता उसमें तो अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। मकड़ी का जो शरीर है उसको लेकर तो उपादान कारण है उस तंतु का, जो जीवात्मा है चेतन है उसको लेकर निमित्त कारण है, उससे वो तंतु निकलता है। ऐसे संसार के निमित्त और उपादान कारण दोनों भगवान होते, जिस सृष्टि बनती है ऐसा ग्रंथ भगवान आता है। अभी हम कोई नहीं समझा, पूछ लो। मैं जहां तक ऐसी प्रक्रिया बात कम कहता हूँ, ये वक्त पर आ जाती ये बात तो बोलता हूँ, क्योंकि उसको कोला उलझ जाओगे, कुछ फायदा नहीं निकलेगा। ठीक बता देंगे तो पास हो जाएंगे। महाराज कोष कितने हैं, हम कहें अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय, सारे पढ़े लिखे हैं, नहीं बताएंगे तो अपढ़ इतना ही काम है, कहा तो कर देंगे सिद्ध, कहा पढ़ देंगे फैल। तुम फैल से मतलब है ना, कोई सिद्ध सी ना जाओगे, पास का डर क्या हो गया, फैल से डर क्या हो गया, पर उनके पास उतनी है, उतने से ही वही कसौटी अपने लगा करके ये जानकार सिद्ध कर दिया। तो अपने को तो लाभ लेना चाहिए, वो कितने पढ़े लिखे हैं, कहाँ तक है, इसलिए हमें क्या मतलब है। हम भिक्षा को जाते हैं तो ये नहीं कि खेती करते हैं नहीं करते हैं, भिक्षा लेनी है पूछते ही नहीं, हमें तो रोटी दे दे उसका काम है, चाहे खेती करते हो चाहे व्यापार करते हो चाहे मजदूरी करते हो। ये तो वो देखे अन्न तुम्हारे कहाँ से आया है, खेती से आया है, मजदूरी से आया है, हिस्से में आया है, किसने आया है, तो हमें मतलब मतलब रोटी से है, हम किसी से हमें रोटी मिल जाएगी खा लेते हैं। तो वास्तव में जो जिज्ञासु होता है उनके इन बातों से खास मतलब नहीं होता है, उनका मतलब होता है तत्व से, भक्ति से, प्रेम से, बोध से, वो मिला जो वो जहाँ मिलेगा वहाँ प्रिय लगेगी, प्रियता और समझे शास्त्रों की बातें होगी वो पढ़ाई वाले को अच्छी लगेगी, परंतु जो अनुभव करना चाहते हैं उनका मन ज्यादा वहां नहीं लगता। तो पढ़ाई की विद्या है, एक एक दो दो तीन तीन सौ को चार दिन फरमाई हो जाए।
भक्ति और शरणागति में कुछ अंतर है क्या?
ना, भक्ति के कई भेद है, उसमें शरणागति भी एक भेद है, भक्ति के कई भेद है। नवदा भक्ति है, साधन भक्ति है, साध्य भक्ति है, प्रेम लक्षणा भक्ति है, रागानुगा भक्ति है, रागात्मिका भक्ति है, ऐसे भक्ति के कई भेद है, उनमें शरणागति भी एक भक्ति है, बड़ी बढ़िया भक्ति है, भगवान ने बड़ा आदर दिया है इसको। अपने कितने भेद है क्यों जानो, अपने तो सीधी सारी काम करो, रोटी कितने प्रकार की होती है, कितनी कितनी हमारे तो रोटी दे दो पेट भर जाए, आम से काम है पेड़ों से काम है, पेड़ कितने हैं, कैसे हैं, कब लगाए हैं, किसने शुरू है, कलम करिए न करिए, लाओ ना आप कल करो। हम तो सार गहन के सीरी, नाना मत को नेग निरंतर देख भई दिलगिरी, हम तो सार गहन के सीरी, हम तो भाई सार चाहते हैं, ये कूड़ा कचरा है बहुत, ये पंडितों का काम है, पोथी पुस्तक टिप्पणा पंडित का काम, हरिया हेले साधु के राम नाम विश्राम, पोथी पुस्तक टिप्पणा जग पंडित का काम।
आप सार सुना दो महाराज जी, सार सुना दो, बाप थोड़ा समय रहा, सार बात सुनाओ, ये तो प्रश्न उत्तर हो लिया,
सार क्या बताऊं बेटा, आप पूछो सार कौन सी बात बताऊं। छह दर्शनों का सार क्या है, छह दर्शन योग और सांख्य, और न्याय और वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये छह दर्शन है हमारे आज भी। छह दर्शन नास्तिक, तो आस्तिक दर्शन छह है, इनमें जगत जीव और परमात्मा तीन का विचार किया है। जगत क्या है, जीव क्या है और परमात्मा क्या है, इन तीनों के विचार में, विचार का विषय जगत और जीव है, ईश्वर विचार का विषय नहीं है। यद्यपि लिखा है कि विचार जीव और जगत और ईश्वर तीनों का विचार, जिसने पहले पहले में आता है विचार संदर्भ में, इनका विचार करना है। एक मार्मिक बात बताऊं, विचार वहां चलता है जहां कुछ जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं, वहां न जानने अंश में विचार चलता है, और जिसके विषय में कुछ नहीं जानते वहां विचार नहीं चलता, वहां तो मान्यता चलती है, इसको मानो और स्वतंत्रता है, विचार नहीं चलेगा वहां। जीव के विषय में विचार चलेगा, क्यों जीव है, ये कैसा है, ये अणु प्रमाण है, मध्यम परिमाण है, एक महान प्रमाण है, ये जड़ है, ये चेतन है, जड़ चेतन उभयात्मक है, जड़ चेतन ग्रंथि है, ऐसे जीव क्या, तो जीव के विषय में कई भेद है, तो जीव के विषय में जिज्ञासा होगी, क्योंकि जीव है हम लोग जानते हैं जीव है, पर है कैसा, तो इसमें जिज्ञासा होगी। कुछ ज्ञान होता है वही जिज्ञासा चलती है, और ज्ञान पूरा होने पर जिज्ञासा पूरी होगी तब तो ज्ञान हो जाता है। तो और जगत के विषय में होता है कि जगत क्या है, ये स्थावर है कि जगम है कि जड़ है, चेतन है, क्या है जगत क्या है, तो अनिर्वचनीय माना है उन्होंने, निर्वचन नहीं कर सकते जिसका, ऐसा अनिर्वचनीय माना है। क्यों ने जगत वो माया का कार्य माना है, अविद्या का कार्य माना है, क्यों ने जगत वो प्रकृति का कार्य माना है, और प्रकृति को अनादि और अनंत माना है, कहीं प्रकृति को अनादि और शांत माना है, कहीं ईश्वर को कहीं चार भुजा, कहीं दो भुजा, कहीं हजार भुजा, कहीं अब भुजा, कहीं निराकार, कहीं साकार माना है। तो इस विषय में हमारी इतनी बात का है, ईश्वर है वो मालिक है, जीव हम है और ये संसार है, इतना ही ज्ञान काफी है। संसार त्याज्य है, परमात्मा ग्राही है, किसके लिए, जीव के लिए, तो हमारे लिए संसार त्याज्य और परमात्मा ग्राही है, सब दर्शन आप समझे विचार को बस है वो नहीं बोल मत करो। एक जाट रामायण सुनी, फिर वे कहो वो रावण और रामड़ो, एक तो रावण एक रामड़ो, वो लेगी वाली लुगाई वे बाल की गावड़ो, रामायण तो इतनी है, ये पंडित ने मत मत कर आग किया है, निर्सारी बना दिया है। एक रावण एक रामड़ो, वो लेकिन लुगाई वे बाल की गावड़ो, हमारा तो दर्शन ही है। आगे क्या करेंगे आप उसमें महाराज, ये अध्यास का वर्णन है, वो अध्यास होता है अर्थाध्यास होता है, ज्ञानाध्यास होता है अर्थाध्यास में कई भेद है, ज्ञानाध्यास हुए कैसा देश है वो, स्वरूपाध्यास है, संबंधाध्यास है, अन्यतराध्यास है, बात करते हैं हम तो हाथ जोड़ दे, करना क्या है भाई, हमारे को उस अध्यास क्या है, क्या अध्यास है, संसार विश्व बुद्धि, ये अध्यास है, ये बहम है, अध्यास है, ये मिटा दो सिर्फ ठीक हो जाएगा। अरे अध्यास हो याद करते रहो, संबंध अध्यास है, संबंध नहीं संबंध अध्यास है, अन्य अन्य अध्यास है, अन्यत्र अध्यास है, ऐसी बात है। तो सार बात क्या है, सार है भगवान। इस बात से संतों ने कहा, चारों वेद डंडोर के अंत को गए राम के सो रज, पहले को इतने ही में क्या क्यों पढ़ा, देखो भाई इतने पढ़ने का राम राम को सीधा ख्याल हो, इसका अर्थ ये नहीं है कि शास्त्र निरर्थक है, उन दबत करना भाई, उल्टा मत चलना है। जिनकी रुचि है शास्त्र को देखे, जरूर देखे। सर्वेश लोसनम शास्त्र यश नाश अंध है, उस संसार में सबके आंख है तो शास्त्र है, शास्त्र से देखते सभी। गावो गंधेन पश्यंती और सारे पश्यंती भाई, शास्त्र ही पश्यंती भाई द्विजा और सारे ही पश्यंती राजा नाम चक्षुभ्याम इतरे जना। राजा लोग है गुफिया पुरुष के साथ देखते हैं कहा क्या हो रहा है, किस देश में कैसा हो रहा है। उनकी आंख गुफिया पुरुष होती है ना, सीआईडी विभाग, राजा लोगों की आंख वो होती है। गाओ गंदे देखो आप गल के बात करेंगे, देखे तो सुनती वो गंध से देखती है, हम देख रहे हैं कि गंध है। गाओ गंध इन पश्चिंती और शास्त्र ही पश्चिंती, दूसरा ब्राह्मण है वो शास्त्रों में देख रहे, शास्त्र में क्या लिखा है, क्या प्रमाण है, क्या प्रमेय है, क्या लोक है, कैसे लोक है, किस ऐसे सुख दुख होता है, क्या जीव की गतियां होती है, इन बातों को शास्त्र पश्चिंत नहीं दूजा। ब्राह्मण है शास्त्रों से देखते हैं, सारे ही पश्चिंत राजा ना ये चक्षु ब्राह्म इतरे जाना, दो से दो दो आंखों से देखते आंखों से देखते इतना ही। ऐसे शास्त्रों की बात है, विचित्र विचित्र है। शासन शासन सृष्टों की शिक्षा दी जाए वे शास्त्र होते हैं, जिससे शिक्षा मिलती है। दाम नहीं दाम नहीं सस दस यू युजती मी पत दस नख करने, ऐसे श्रम बढ़े होता है सस्ता तुझे शासन सृष्ट हो शास्त्र बन जाता है। तुद से तोत्र बनता है, साबु का नाम होता है, ये शब्द बनते हैं इनसे। तो शास्त्र नाम है शिक्षा का, तो शिक्षा की आवश्यकता है सब कोई, मगर शिक्षा असली वो है जिससे शिक्षा के कल्याण हो जाए। अब तरह तरह की बातें सीख रही है, जितना विज्ञान है, अनेक तरह की लिपियां, अनेक तरह की भाषाएं, अनेक तरह का गाना बजाना, ये कला बहुत विद्या है, बहुत विद्याओं का ज्ञान करो तो अनंत पारंखिल शब्द शास्त्रम, शब्द शास्त्र एक व्याकरण है वो भी अनंत पारंखिल शब्द शास्त्र। स्वल्पम तथा युज बहुवस्त विज्ञान सारम तथो व्याम अपाश्य भगवो अंधेरता क्षीर विवामो मध्यात। कहते हैं भाई सार सार ज्ञान करो, शास्त्र बहुत है, उम्र है थोड़ी और विघ्न बहुत से है, तो असली तत्वों को कैसे जानोगे। तो सारम तत्व व्यायम अपाश्य फल को निरंतर चीजों का त्याग करके ज्ञान को लेने को, जैसे हंस है वो दूध दूध पी लेते पानी पानी छोड़ देते हैं, ऐसे सार सार ज्ञान कर दो बस, अब पढ़ा दूध पढ़ा है क्या करें। ऐसे सारम तत्व व्यायम अपाश्य फल को हंस यथा खीर विवामो मध्यातों मध्यात खीरमय। नारायण 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 नारायण